नमस्कार सोतो, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। हमारा आज का विषय है हमारा मुखिया कैसा हो। मध्य प्रदेश में इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं और इसी दिनों में जनता अपने मतों का प्रयोग कर गांव की सरकार बनाएंगे। एक मतदाता एक मुखिया में क्या योग्यता है, क्या विशेषताएं देखता है, क्या मतदाता किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकता है। आज हमारे साथ लोहियावादी एवं गांधीवादी विचारक डॉक्टर अनुप सर जुड़े हुए। अनुप सर, मोबाइल वाणी पे स्वागत सर आपका।
योगेश भाई नमस्कार।
जी सर। सर, आप किस तरीके का मुखिया चुनना चाहोगे? सर,
मैं मतदाता के रूप में एक प्रकार से ऐसे मुखिया चुनना चाहूंगा जो सबसे पहले गांव को अपने कर्तव्यों में लाता हो, गांव को प्राथमिकता देता हो, गांव के विकास को प्राथमिकता देता हो, गांव के स्वच्छता और गांव को हरा बनाने के लिए प्राथमिकता देता हो, गांव के संसाधनों पे गांव के लोगों के अधिकार को जताने को मानता हो और वह यह भी मानता हो कि मैं जीतूंगा तो हमारे गांव में शराब बंदी होगी, वह यह भी चाहता हो, यह भी करने वाला हो कि हमारे जीतने के बाद गांव में जो जाति प्रथा है या जो गांव में कुप्रथा है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, या हम स्वतः जाति के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। अगर हम वोट मांगेंगे तो जनता के विकास के नाम पर वोट मांगेंगे, गांव में चल रही शराब को लेकर के शराबबंदी की मांग करेंगे। तो हमारा जो मुखिया होगा वह पूर्ण तरीके से गांव को समर्पित होना चाहिए और एक मतदाता के रूप में हम ऐसे ही मुखिया का चुनाव करेंगे।
जी सर। सर, क्या आपको लगता है कि अधिकतर ग्राम की जो समस्या है वो ग्राम सभा में रखकर क्या उन समस्याओं का समाधान होता है? सर
देखिए, जो गांवों की समस्या होती है, गांवी समस्या जिसको कहा जाता है, उसका सबसे बड़ा समाधान का स्रोत ग्राम सभा होती है। परंतु आजकल जो ग्राम सभाएं है उन ग्राम सभाओं को सक्रिय नहीं किया जा रहा है, उसको एक तरीके से निष्क्रिय बनाने का गठबंधन चल रहा है, निष्क्रिय बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। क्योंकि ग्राम सभा अगर बुलाई जाएगी तो उसमें गांव के चुने हुए मेंबर होंगे, चाहे जो लोग नामित होंगे या नॉमिनेटेड होंगे वो व्यक्ति आएंगे, तो नाना प्रकार के भिन्न मत वाले होंगे और कुछ उसमें अच्छी बात निकल करके आएगी, गांव के विकास के प्रति बात निकल करके आएगी। तो गांव की जो समस्या है उसका समाधान प्राथमिक स्तर पे तो ग्राम सभा में ही हो जाना चाहिए क्योंकि ग्राम सभा ही निर्णय लेती है। लेकिन आप आज देखिए कि कहीं पे भी किसी भी गांव में ग्राम सभा को सक्रिय नहीं किया जा रहा है। कुछ लोग उसके लिए काम कर रहे हैं कई प्रकार के संगठन बना करके, लेकिन वो संगठन भी एक प्रकार से एनजीओ नुमा संगठन है जो उसमें अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं और उसमें जाकर के अपना ताल जमाने का काम करते हैं कि हमारा क्या होगा इसमें, उसके आधार पर ग्राम सभा का निर्माण करते। लेकिन देखा जाए तो वास्तव में अगर ग्राम की समस्याओं को हल करना है, गांव की समस्या को समाधान करना है, समस्याओं से लोगों को निजात दिलाना है, तो सरपंच सहित जो बाकी प्रशासनिक अमला है उसको चाहिए कि गांव सभा को सक्रिय करे, उसको अधिक से अधिक पावर दे, उसको मजबूत करे। और कहा ही गया है, जब हम भारत के संविधान को पढ़ते हैं तो पहले ही लाइन आती है कि हम भारत के लोग, यानी जो पूरी सत्ता है वह भारत के लोगों में है। तो इसी प्रकार से जो गांव की सत्ता है, जो गांव की व्यवस्था है, वह गांव के लोगों में है। तो कोशिश यह होनी चाहिए कि जो ग्राम सभा बने वह भी एकदम विशुद्ध रूप से वैचारिक बने, उसमें भी किसी प्रकार के जाति धर्म मजहब के आधार पर किसी को न चुना जाए, उसमें यह कोशिश किया जाए कि अधिक से अधिक ईमानदार व्यक्तियों को लिया जाए और उन लोगों को लिया जाए जो गांव को अपना घर मानते हो, न कि परिवार को अपना घर मानते हो। और गांव सभा के स्थान पर अगर निर्णय लिया जाएगा तो उसको फेल करने का अधिकार किसी प्रशासन को नहीं है, इसलिए अधिकांश समस्या ग्राम सभा के स्तर पर हल हो जाएगी अगर मन से प्रयास कर दिया जाए तो।
सर, क्या एक पंचायती राज अधिनियम के अनुसार पंचायतों में ग्राम के विकास के लिए समितियां गठित की जाती हैं?
जी।
तो क्या सर इनके कार्य पर थोड़ा प्रकाश डालकर विस्तार से थोड़ा बताना चाहेंगे? सर
देखिए, हर गांव के लगभग कुछ समितियां एक प्रकार की होती है, लेकिन कहीं कहीं जो गांव होते हैं वो अपने हिसाब से भी कुछ समितियां बनाते हैं। अगर डिटेल देखा जाए तो जो पंचायती राज अधिनियम है उनमें बहुत सारी समितियों का वर्णन नहीं है, उसमें एक मोटा मोटी समितियों का वर्णन कर दिया गया है। तो समिति तो गांव के स्तर पे बनाई जा सकती है, उसको कोई बाधित नहीं कर रहा है, वो तो सरपंच के ऊपर निर्णय कर रहा है, वहां के लोगों के ऊपर निर्णय कर रहा है कि मान लीजिए समिति है, काम नहीं कर रही है, इसमें मेंबर कम है तो उसको डिजॉल्व कर दो, दूसरी बना लो। अगर बहुत सारी जरूरत पड़ गई कि नहीं नहीं अभी एक समिति ऐसी होनी चाहिए जो गांव के कार्यों का आकलन करे, तो ग्राम सभा तो सक्षम है, उसको किसी संविधान की जरूरत नहीं है। सरपंच सक्षम है, वहाँ के लोग सक्षम है, तो उस प्रकार से एक समिति बना सकते हैं। और ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किए कि अगर छोटी छोटे समितियां बना लिया जाए, कई प्रकार की समितियां बना लिया जाए और किसी को दे दिया जाए, किसी समिति को कि आप गांव के पानी की स्वच्छता के काम में लग जाए, किसी को दे दिया जाए कि आप नाली और मेड़बंदी के काम में लग जाए, कि कोई एक समिति बना दिया जाए जो गांव के चारों तरफ पौधे जो लगाए जाए उनकी सुरक्षा करे, किसी को एक बना दिया जाए कि आप ऑडिट करो, किसी को एक बना दिया जाए कि आप सरपंच के कामों में सहयोग करो, तो उससे क्या होगा कि जो सरपंच होंगे, हमारे वार्ड मेंबर होंगे, एक तो उनके ऊपर से काम की जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा, सेक्रेटरी के ऊपर से भी काम का बोझ हल्का हो जाएगा और वो पूरे मन लगा करके अपना काम करेंगे और निरंतर गांव की जो समस्याएं है वो ऑफिस तक कार्यालय तक पहुंचती रहेगी, तो उस पे ज्यादा मात्रा में काम होगा और वह गांव एक अनुकरणीय गांव बन जाएगा, उसके माध्यम से किया जा सकता है। तो ये तो गांव के लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस प्रकार की समिति का निर्माण कर रहे और किस प्रकार से काम कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा संविधान में न रोक है और न ही उस पर लगाम है कि आप समिति न बनाइए। तो ये तो बहुत एक अच्छी पहल है कि गांव सभा ग्राम सभा में छोटी छोटी समितियां बना करके काम को कराया जा सकता है।
सर, आपके दृष्टिकोण से किस तरीके का मतदाता होना चाहिए?
हाँ, ये सवाल बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी तक जो सवाल होते थे वो होते थे कि मुखिया कैसा हो। भाई, हम मुखिया से तो बहुत आशा रखते हैं, मुखिया हमारे लिए कर दे, गांव के लिए वो कर दे, गांव के विकास के लिए कर दे, लेकिन मतदाता से भी एक आशा ये होनी चाहिए कि मतदाता जब बटन दबाने जाए तो ये सोच करके दबाए कि हम अपने जाति धर्म मजहब के लिए बटन नहीं दबा रहे, हम अपने काम के लिए अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बटन नहीं दबा रहे, बल्कि हम जो बटन दबा रहे हैं वह देश और गांव के निर्माण के लिए बटन दबा रहे हैं। क्योंकि अगर गांव हमारा मजबूत है तो हमारा देश मजबूत होगा, अगर गांव में ईमानदारी है तो देश में ईमानदारी आएगी। तो मतदाता को भी तो प्रथम दृष्टि, अगर मतदाता मतदान करने जा रहा है तो उसको अपने स्वार्थ को बाजू में रख करके मतदान करना चाहिए, दूसरा जाति धर्म को बाजू में रख करके मतदान करना चाहिए। और मतदाता को भी यह कहना चाहिए कि जो मुखिया या जो चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी है, अगर वो पैसे बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं या इस प्रकार के कुछ प्रलोभन दे रहे हैं, तो उसको नकारेंगे और उस मुखिया के सामने हम कहेंगे कि हम तुमको वोट नहीं देंगे। वैसे मुखिया को चाहिए कि वे सारे मतदाता मिलकर के जेल भिजवा दे या उसकी शिकायत कर दे चुनाव आयोग को और उसको निरस्त करा दे। तो सबसे पहले तो मतदाता को निष्ठावान होने की जरूरत है। मतदाता जितना अपने स्वार्थ से दूर होगा, योगेश भाई, उतना गाँव, उतना देश और उतने प्रदेश मजबूत होगा। क्योंकि अंततोगत्वा निर्णय मतदाता को ही लेना है और अंततोगत्वा लिए गए निर्णय का परिणाम भी मतदाता को ही भुगतना पड़ता है, चाहे वो परिणाम बुरा हो और चाहे परिणाम अच्छा हो। तो मेरे नजर में तो मतदाता निष्ठावान, ईमानदार और जाति धर्म पंथ से ऊपर उठ करके सोचने वाला होना चाहिए, तब जाकर के एक अच्छा मुखिया या वार्ड मेंबर या जिला परिषद या कोई भी हो उसका चुनाव कर सकता है।
सर, एक मुखिया के तौर पर गांव के विकास में कितना महत्वपूर्ण होता है मुखिया, साथ में सर एक मतदाता गांव के विकास को देखते हुए किस तरीके का मुखिया चुनना चाहेगा?
दोनों एक दूसरे के पूरक है। मतदाता के बिना मुखिया नहीं बन सकता और मुखिया के बिना मतदाता का नेतृत्व नहीं हो सकता है। अगर किसी गांव की जनसंख्या 2000 है तो 2000 लोग मिलकर के नेतृत्व नहीं कर सकते, कोई एक व्यक्ति ही नेतृत्व करेगा, क्योंकि 2000 लोग सारी जिम्मेदारियों का बंटवारा कर सकते हैं, लेकिन अगर सारे लोगों पे पूरी जिम्मेदारियां दी जाए तो शायद उसका निर्वहन ठीक से नहीं हो पाएगा। और अगर एक मुखिया है 2000 लोगों को तो मुखिया नहीं है, वो तो सारे लोगों के शक्तियों से चुना गया एक व्यक्ति है, सारे लोगों ने एक समझौता करके उसको अपना मुखिया माना है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। हाँ, मतदाता को यह चाहिए कि मुखिया का न केवल विरोध करे बल्कि उसके सकारात्मक विरोध करे, समालोचक हो। अधिकांश क्या हो रहा है कि करना धरना कुछ नहीं है, हम आलोचक बन जाते हैं। विपक्ष की जो भूमिका होती है आलोचनाओं में सिमट गई है। विपक्ष का मतलब आलोचना नहीं होता है, विपक्ष का मतलब होता है कि सरकार को सकारात्मक दिशा दिखाना, सरकार को आगे बढ़ाना और सरकार के काम जो गलत है उसको टोकना और सरकार के जो अच्छे काम है उसको सराहना करना। तो मतदाताओं को यह चाहिए कि अगर मुखिया अच्छा काम कर रहा है तो उसकी सराहना करे और मुखिया अगर गलत काम कर रहा है तो एकजुट होकर के लड़े। और मुखिया को भी चाहिए कि कोई मतदाता अगर उसके पास आकर के अपने काम के बारे में बात कर रहा है और उसको प्रलोभन दे रहा है, मुखियाओं को भी आजकल प्रलोभन दिया जा रहा है देख लीजिएगा, तो वो भी उसको नकारे कि नहीं, आप अपनी व्यक्तिगत बात कर रहे हो, उससे गांव को क्या फायदा हो रहा है, उससे शहर को क्या फायदा हो रहा है, उससे उस मोहल्ले को क्या फायदा हो रहा है। तो मुखिया को भी ये देखना चाहिए कि मतदाता का नजरिया क्या है और मतदाता को भी देखना चाहिए कि मुखिया का नजरिया क्या है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, अगर दोनों एक साथ मिलकर के चल ले तो बहुत बड़ा विकास हो जाएगा, और दोनों अगर विपरीत दिशा अपना ले एक दूसरे के तो विकास वहीं पे ठप हो जाता है और प्रशासनिक अमला और कुछ एनजीओ उसका फायदा उठाने लगते हैं।
सर, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा हो और अन्य कोई योजना हो इसके
जी
द्वारा रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं,
जी
लेकिन सर उसमें एक मुखिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, साथ ही एक मतदाता अपने गांव में रोजगार मिले, तो इस दृष्टिकोण से एक मुखिया को किस तरीके से चुने और साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न हो इसके लिए नए कोई आयाम किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में ला सकते हैं।
जी देखिए, जो गांवों में रोजगार का सवाल है वह एक सामूहिक प्रयास से हो सकता है। आज के गांव हमारे आत्मस्वावलंबी गांव नहीं है, पहले के हमारे जो गांव थे वो आत्मस्वावलंबी गांव थे। पहले गांव के लोग बाहर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनके गांव में हर व्यवस्था होती थी, और उसका कारण था कि जितना मुखिया ईमानदार होता था उससे ज्यादा मतदाता और पंच नहीं है, वो पंच की व्यवस्था होती थी, वो पंच लोग ईमानदार होते थे। डॉक्टर लोहिया थे, अगर डॉक्टर लोहिया को आप पढ़े होंगे तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि भारत के अंदर बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं है, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की जरूरत है। जो मनरेगा का कंसेप्ट आया कहीं ना कहीं वहीं से आया है कि डॉक्टर लोहिया कहते थे कि भारत में दो प्रकार की जुड़वा बीमारी है, एक सूखा और एक बाढ़। बाढ़ आता है तो भी हमारा गांव प्रभावित होता है, सूखा आता है तो भी हमारा गांव प्रभावित होता है। तो लोहिया कहते थे कि नदी जोड़ो और नदी खोदो अभियान अपनाओ, उससे क्या होगा कि गांव के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और जहां पानी नहीं पहुंचता है वहां पानी पहुंच जाएगा, और जो पानी नुकसान होता है वो भी बचत हो जाएगी, तो न बाढ़ आएगी न सूखा आएगा। मनरेगा के अंतर्गत भी यही हो रहा है कि सारे कामों को सरकार मॉनिटरिंग कर रही है, सरकार दे रही है, और उसके मॉनिटरिंग कौन करता है, हमारा मुखिया करता है या गांव का जो सेक्रेटरी होता है या जो पंच चुन करके देते हैं लोग मॉनिटरिंग करते हैं। अब दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि अब आप देखिए कि मनरेगा के काम में भी कुछ एनजीओ प्रवेश कर गए हैं। अब वो क्या करते हैं, मुखिया से माप में काम ले लेते हैं, आप हमको काम दे दो हम काम कराएंगे, हम मजदूर रखेंगे। अब उसमें हो क्या रहा है कि वो लोग मशीनों से काम करा दे रहे हैं और अपने 10-20 लोगों के नाम लिख देते हैं उसमें, जो लोग काम करने जाते ही नहीं है। अब अगर मनरेगा की उनकी मजदूरी लगभग लगभग 200 रुपया है, तो जो लोग काम करने नहीं जाते हैं उनको 100 रुपया दे करके उनका नाम लिख लेते हैं, और जो काम मजदूर 5 दिन में करता है वो काम मशीन से वो कम पैसे में करा करके बचत कर लेते हैं। तो यह निष्ठा का सवाल है, यहाँ पे जो मतदाता है उसको भी निष्ठावान होना चाहिए और मुखिया को चाहिए कि ये जो हम काम कर रहे हैं ये गलत काम कर रहे हैं, अपने गांव के लोगों के साथ, अपने गांव के मजदूरों के साथ, अपने मतदाता के साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये जो मशीनें प्रयोग करेंगी मनरेगा के अंतर्गत यह धोखा है, न कि काम को बढ़ाने वाला है। तो अगर काम को बढ़ाना है, दोनों में कॉम्बिनेशन अच्छा रखना है, तो मुखिया और मतदाता दोनों को मिलकर के मॉनिटरिंग करना चाहिए, न कि एक को मॉनिटरिंग करना चाहिए। और पूरी कोशिश यह करनी चाहिए कि गांव के अंदर किसी प्रकार की कोई संस्था प्रवेश न कर जाए जो गांव की व्यवस्था को बिगाड़ रही। आज देखिए कि गांवों में जो संस्थाएं जा रही है वो भेष बदल करके जा रही है, उन बहुरूपियों को समझने की जरूरत है। वो किस लिए आते हैं, पहले बहुत अच्छी बातें करते हैं और बाद में वो सेक्रेटरी और वहां के प्रधान और वहां के बड़े बड़े गांव के बड़े बड़े लोगों से मिलकर के वो अपनी योजनाएं चलाने लगते हैं और योजनाओं का बंदरबांट करने लगते हैं। यह बात मतदाता को समझना चाहिए। और एक हमारा यह भी सुझाव है कि हर 15 दिन पे या हर सप्ताह में मुखिया को अपने सरपंच अपने पंचों के साथ बैठना चाहिए, उसमें सेक्रेटरी को भी बैठाना चाहिए, और एक मीटिंग सेक्रेटरी न रहे तब होना चाहिए कि भाई क्या कमियां है और क्या उसको कैसे दूर किया जा सकता है। और दूसरी बात कि सरपंच को कभी सेक्रेटरी के घर जाकर के बात नहीं करना चाहिए, सरपंच को जो भी बात करना चाहिए सरपंच कार्यालय में बैठ करके बात करना चाहिए और गांव के लोगों के साथ बैठ करके बात करना चाहिए, क्योंकि जो सेक्रेटरी है वो गांव के विकास के बारे में नहीं जानते, गांव के विकास के बारे में वहां की जनता जानती है। इसलिए जरूरी है कि सारे कम्बिनेशन बने और निष्ठावान पूर्ण होकर के काम करें।
सर, क्या इन दिनों त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में संपन्न हो रहे, तो सर चाहे जिला पंचायत हो चाहे जनपद पंचायत हो और गांव के सरपंच तो बैलेट पेपर से चुनते हैं, परंतु इस बार जिला पंचायत जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव भी बैलेट पेपर से हो रहा है, तो इस कदम को किस तरीके देखते सर आप?
ये शुरू से होता आया है और ये बढ़िया कदम है। चाहे देखिए हर जगह निष्ठा और पारदर्शिता की बात रहती है, चाहे चुनाव ईवीएम से हो चाहे चुनाव बैलेट से हो, आप कितने निष्ठावान है, कितने ईमानदार है, कितने पारदर्शी है उस पर डिपेंड करता है। न ईवीएम से प्रॉब्लम है न बैलेट पेपर से प्रॉब्लम, प्रॉब्लम तो है कि हम किस आधार पर मतदान कर रहे हैं। और वह जो ये ब्लेम लगता है कि ईवीएम खराब है, ये एक पहलू हो सकता है लेकिन ये संपूर्ण पहलू नहीं है, उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर अपने को चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो पॉलिटिकल लोग चर्चा करते रहते हैं। लेकिन भाई अंततोगत्वा बटन चाहे बैलेट पे मुहर लगाने का काम तो मतदाता करता है, वो किस आधार पे करता है ये मायने रखता है। ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता कि बैलेट से हो रहा है कि ईवीएम से हो रहा है। बैलेट भी हमारे लोकतंत्र की एक हिस्सा है और ईवीएम भी एक लोकतंत्र की हिस्सा है। सरकार और जनता को जिसमें सुविधा लगे उसमें करा ले, हमें तो अपने मन से नेता चुनना है। हम अब ऐसा नेता चुनेंगे जो हमारे गांव का विकास करे, हमारे क्षेत्र का विकास करे, हमारे पंचायत का विकास करे। तो चाहे ईवीएम वाला हो चाहे बैलेट वाला हो, दोनों का स्वागत है, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है।
जी सर, सर मेरा अंतिम सवाल है, आप
जी
मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मतदाता को मैं एकदम यह संदेश देना चाहता हूँ कि जिस दिन आप बटन दबाने जाए उस दिन आप 3-4 बातों को ध्यान में रखिए। ऐसे प्रत्याशी के सामने बटन दबाइए जो पहले यह कहता हो कि मैं शराबबंदी कराऊंगा, और उसके बाद वो यह भी ऐसा भी प्रत्याशी हो जो खुद शराब न पीता हो। दूसरी बात, वह जाति धर्म मजहब के नाम पर वोट नहीं मांगता हो। तीसरी बात, वह धन खर्चा करके वोट न मांगता हो। वह जब घूमने जाए, लोगों से संपर्क करने जाए, तो धन के बल पे संपर्क करने न जाए बल्कि अपने काम के बल पे संपर्क करने जाए। और मतदाता एक ऐसा मुखिया चुने जो निष्ठावान हो, जो कर्तव्यवान हो, जो स्वार्थ को बाजू में रख करके गांव के लोगों को और गांव को अपना परिवार समझता हो, न कि सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को अपना परिवार समझता हो। तो एक ऐसा मुखिया चुना जाए जो निष्ठावान हो और जो गांव में हो रही कुप्रवृत्तियां और अंधविश्वास को दूर करने वाला हो। एक ऐसा मुखिया हो जो निष्ठावान पूर्वक हो, ईमानदारी हो, और गांव से नाना प्रकार की कुरीतियों को दूर करते हुए इस शराब जैसी बीमारी को दूर करे और पूरे गांव को अपना परिवार समझे। एक ऐसा मुखिया हो, मतदाताओं के लिए यही संदेश है कि जब वो बटन दबाए जाए तो निष्ठावान होकर के जाति धर्म पंथ से ऊपर उठ करके बटन दबाए।
जी सर, तो ये थे डॉक्टर अरुप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से हमारा मुखिया कैसा हो इस विषय पर जानकारी साझा की। अरुप सर, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी योगेश भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
छिंदवाड़ा वाले सबको दोस्त योगेश।